ണമോരിഹന്താണം ണമോ സിദ്ധാണം ണമോ ആയിരിയാണം ണമോ വജ്രായാണം ണമോ ലോയേ സഭ്യസാഹുണം മംഗളം ഭഗവാൻ വീരോ മംഗളം ഗൗതിമോഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാര്യോ ജൈനധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവമംഗളമാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം പ്രധാനം സർവധർമാണാം ജൈനം ജയതു ശാസനം ജൈനം ജയതു ശാസനം നമഃ ശ്രീ വർദ്ധമാനായ നിർധൂതകലിലാത്മനി സാലോകാനാം ത്രിലോകാനാം യദ് വിദ്യാദർപണായതി ദീശയാമി സമീചീനം ധർമ്മം കർമ്മ നിവരേണം സംസാരി ദുഃഖതഃ സത്വാൻ യോധരത്തുത്തമേ സുഖേ സദൃഷ്ടിയാനി വൃത്താനി ധർമ്മം ധർമ്മേശ്വരാവിദോ യദീയ പ്രത്യനീകാനി ഭവന്തി ഭവപദ്ധതി.
സമാധി മരണ കി ചർച്ച ഹൈ, പേജ് നമ്പർ ഹൈ 442. एक जब तक इसका वैराग परक भजन बोले सभी लोग दोहराने.
दिन रात मेरे स्वामी वे भाव नाए भाव दिन रात मेरे स्वामी मैं भाव नाए भाव देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं समता का भाव धर कर सबसे क्षमा मंगाऊं समता
सभी लोगों के मुखारविंद से निकलना चाहिए.
त्यागूं आहार पानी औषधि विचार अवसर त्यागूं आहार पानी औषधि विचार अवसर छूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं छूटे जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे जागे नहीं कसाए नहीं वेदना सतावे तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान को अगाऊं तुमसे ही लो लगी हो दुर्ध्यान
अग्नि को भगाऊं। आत्म स्वरूप यत्वा आराधना विचारूं, आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्माति माने कट हो चर्चा धर्म सुनावे, धर्माति माने कट हो चर्चा धर्म सुनावे, भूसावे धाने रखे गाफिल न होने पाऊं, वो सावेदा जीने की हो न वांछा, मरने की हो न ख्वाहिश, जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाहिश, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, परिवार मोह को भोगे जो भोग पहले उनका न हो विसुमिरन, भोगे जो भोग पहले मेरा जिसंपिदाया पद इंद्र का न चाहूं, मेरा ये संपिदाया पद इंद्र का न चाहूं, रत्नात्र का हो पालन होवन्ति में समाधि, रत्नात्र का हो पालन होवन्ति में समाधि, शिव राम प्रार्थनाये जीवन सफल बनाऊं, शिव राम प्रार्थनाये जीवन सफल बनाऊं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए माऊं। क्या भावना भाव कि मृत्यु ना हो ऐसी भावना नहीं होती, रोग ना आवे ऐसी भावना नहीं होती, प्रतिकूलता ना आवे ऐसी भी भावना नहीं होती, क्योंकि ये कोई देता करता थोड़ी, ये तो उदय का खेल, और प्रकृति में विश्व में बेईमानी नहीं चलती, ना कोई करता धरता। आप चाहो कि हमें रोग ना हो, हमें यानी शरीर को, तो सुनता कौन? ये तो जो अंतिम विदाई हो रही है उनके भी शरीर में आग लगी तो लगी, कोढ़ होना है तो होना, कैंसर होना है तो होना, यानी कोई सुनाई नहीं इतने बड़े विश्व में, एक भी परमाणु यानी सारे छह द्रव्य बहरे हैं बाबूजी, उनके कान नहीं है, और आप कितना भी चिल्लाओ रो कोई सुनने वाला नहीं। बहुत व्यवस्थित विश्व है, तो ज्ञानी जन ये अंतिम समय में क्या मांगते होंगे सोचो, हमारे परिणाम शांत रहे, हमारे हृदय से धर्म न छूटे, हमारे भगवान का मार्ग हमारे हृदय में रहे, प्रभु हम सत्यता को न छोड़ें कभी, हमारी समता न छूटे, हमें आपका मार्ग न छूट जाए। जो ये मांग है तो ये नहीं मांगता है वो कि भगवान बचाओ बचाओ बचाओ, ये कायरों जैसा थोड़ी मार्ग। समाधि मरण नाम है परंतु मरण नहीं है उसका, उसकी तो शांति है। नियम सार चलता था तो उसमें ऐसी चर्चा आई, पद्म प्रमलधारी देव उन्होंने कहा हे भगवान, मैं चाहे त्रियंशी गति में जाऊं, चाहे देव पर्याय में जाऊं और चाहे नरक में जाऊं, चाहे ज्योतिषी देव हूं चाहे विद्याधर हूं, कहीं भी जाऊं मुझे इसका कोई डर नहीं लगता। ऐसा कह रहे पद्म प्रमल, मुझे इसका कोई खतरा नहीं है कि मैं कहां जाऊं, बस इतना भर आपसे विनय है कि आपकी भक्ति हृदय में बैठी। आपकी भक्ति रहे यानी आपका जो बताया तत्व है ये उजल ना हो, यदि ये छूट जाएगा तो दुख नहीं फिर अलग कर सकते। पंच परमेष्टि का स्मरण मिथ्या दृष्टि भी करता है देह छूटने के समय, पंच परमेष्टि का स्मरण सम्यक दृष्टि भी करता है, पर दोनों के स्मरण करने में सुलभ क्या अंतर। एक स्मरण इसलिए करता है कि भगवान आपकी कृपा हो जाए, और एक स्मरण इसलिए करता है कि भगवान आप बिल्कुल कृपा नहीं करना, क्योंकि हमें आपका सहयोग नहीं चाहिए, आपने हमें बताया कि तुम्हारे ऊपर कुछ असर नहीं होता, तुम तो अप्रभावी तत्व। जो स्मरण तो उसे भी आता सम्यक दृष्टि को, पर काय के लिए आता है, उनका उपकार है, उनने तत्व बताया है तो याद रहते। और एक मिथ्या दृष्टि भी भगवान का नाम ले, दोनों के सामने शेर आ जाए तो बताओ दोनों भगवान का नाम लेंगे कि नहीं, पर एक मिथ्या दृष्टि काय के लिए ली, ये भगवान बचाओ, और सम्यक दृष्टि काय के लिए ले गए, ये भगवान मुझे खा नहीं सकता। अरे कहां से साहस आता है, सम्यक ज्ञान क्या कहलाता है। मरण पर भी कष्ट नहीं होता आनंद होता है, ये स्वरूप समझना कितनी बड़ी उपलब्धि, इससे सारा जगत बाबू जी अपरिचित अस्पताल भरे हैं, उनको ये कोई कहने वाला नहीं कि तू देह से भिन्न आत्मा, रोग तुझे नहीं हुआ है देह को हुआ है, तू अभी भी ज्ञाता है, तेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, और दवाई से रोग नहीं दूर होगा, साता वेदनी का पुण्य का उदय आएगा, अब अक्ष नहीं खाओ, ये कोई बताने वाला नहीं, ये तो भगवान महावीर ही बताते थे। तो अपने ज्ञानी जन ऐसी मरण के समय भगवान पंच परमेष्टि की शरण में जाते, ऐसा लिखा शास्त्रों में जयति, कि जिस समय सम्यक दृष्टि जीव देव पर्याय में देह को छोड़ता है अनुरूप, तो वो भगवान के चरणों में अपना माथा ऐसा रखता है, उनके पैर पर अपना माथा रखता है ऐसा, और उसकी कपूर जैसी देह छूट जाती, अब दूसरी पर्याय में आ जाती। और मिथ्या दृष्टि जीव 6 महीने बेहाल होता, ऐसा नरक जैसा दुख भोगता, कहें क्या स्वर्ग सुखों की बात, वहां की कैसी अद्भुत जीव, अंत में बिलखे छे मार। ये देह बुद्धि कितना बुरा पाप है, कितनी भी अनुकूलता हो आखिरी में आंसू आ जाएंगे, रोना पड़ेगा तड़पना पड़ेगा, इसलिए इसकी पहले से तैयारी होने की। जरा सा सुना कि राम मर गए, देव ने तो कौतूहल किया, लक्ष्मण तो सचमुच में देह छूट गई, कितना अंधा अनुराग है, कितना गंधा भाव है कि इसने सोचने नहीं दिया और कुगति में भेज दिया, अब तीसरे नरक गए, कितना लंबा काल है। इसलिए हमें और आपको सावधान होना चाहिए, मंत्र रोज पढ़ना चाहिए, अरे मैं को खल शुद्धो यहां देह अपनी नहीं, इसका कोई ना करता धरता, अमिट अनादि है, मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। ये सब गारुणी मंत्र अपन को निरंतर दोहराना चाहिए, मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी, यह मोह तड़क कर टूट पड़े प्रभु सार्थक फल। ऐसे प्रसन्न रहना चाहिए, कोई कहे कि आपका मरण के बहुत अच्छी खबर लाया, कब कहेगा, जब अपने को आत्मा मानेगा। 442 पेज पर है, अज्ञानी बहिरात्मा इसलिए वह देह में रहता हुआ भी मैं सुखी दुखी, मैं मरता हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मेरा नाश हुआ, मेरा उत्पन्न हुआ, वह मेरे अंतरात्मा सम्यक दृष्टि ऐसा मानता है कि जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा। तो अपन उत्पन्न हुए हैं अनूप, तो अपन मरेंगे कि नहीं? जब अपन उत्पन्न हुए हैं तो अपन मरेंगे कि नहीं? ना अपन उत्पन्न हुए हैं और ना मरेंगे। और यदि देह से अपने को देखा तो उत्पन्न होना भी देखना दिखेगा और मरना भी दिखेगा। यदि तुम्हें मरण का कष्ट नहीं चाहिए तो फिर जन्मदिन नहीं मनाना पड़ेगा। आप सोच लो, जन्मदिन मनाओगे तो फिर उसका दूसरा पहलू आएगा। तो सम्यक दृष्टि के ऐसा सोचता है कि जो उत्पन्न हुआ है वो मरेगा, मैं तो ज्ञानमयी अमूर्तिक आत्मा हूँ, मेरा नाश कभी होता ही नहीं। ये भूख, प्यास, बात, पित्त, कफ, रोग, भय, वेदना, ये सब किसके हैं? पुद्गल के। इसमें आ रहा पुद्गल के हैं। बहू जी के पास गए, युगल जी बाबू के पास, तो बहू जी का स्वास्थ्य ऐसा रहता था ढीला, माइग्रेन भी था, कफ भी बहुत निकलता था और जीर्ण शीर्ण शरीर हो गया था, चलते भी नहीं बनता था। तो उनसे पूछा, बाबू जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो बोले, छौं द्रव स्वस्थ। तो हमने कहा कि नहीं, हम आपका स्वास्थ्य पूछ रहे कि मेरा स्वास्थ्य मेरे पास होगा कि इसके पास होगा? कहाँ बोलते रहते होंगे जब ऐसी भाषा निकल। अपन तो नाटकी भी निकालें तो स्वागत है, बोलते नहीं उनसे नकल भी। ऐसे निकलता मुंह से, अरे भैया तबीयत ठीक नहीं है, बहुत गर्मी पड़ रही है, बम्बई की गर्मी का क्या क्या है। बाबू जी बोले, स्वस्थ? हमने कहा नहीं नहीं, आपकी पूछे, हम ही तो बता रहे कि छो द्रव स्वस्थ, मैं भी स्वस्थ। बाबू जी इसकी पूछ रहे, इसकी नाम कर्म से पूछो, हमसे नहीं पूछो। इसका रिमोट कंट्रोलर उसके हाथ, हमारे बस का नहीं है। बाबू जी जब माइग्रेन है आपको तो ये कष्ट में कैसा लगता होगा? आप बहुत 40-50 वर्ष रहा माइग्रेन तो कैसा लगता होगा? आप कहले उस समय आत्मा की विशेष याद आती कि देखो जान रहा है, जानने में आ रहा है मुझे माइग्रेन नहीं है, मैं तो इसका ज्ञाता हूँ, ये घे है। ये साहस आ जाता है आत्मा जानने पर। और ये नहीं जानेंगे तो मरे जा रहे, हम तो मर जाएंगे। देखो ये जब द्वारका जली थी तो नेमिनाथ भगवान ने 6 महीने पहले बता दिया था, कितने दिन पहले, कि 12 वर्ष बाद द्वारका जलेगी। वो तो वीतरागी संत भगवंत है, तो उनको बताने में कोई कि लोग क्या सोचेंगे, कितनी गंदी खबर लाए 12 साल बाद द्वारका जल जाएगी, ऐसा तो कोई वीतरागी को लगता है? जैसे ही ये पता चला कि ये जलेगी, और श्री कृष्ण ने सबको होश में लाने के लिए कहा कि भाई साहब अपनी अपनी योग्यता प्रमाण धर्म में लगो, मुझे आदर्श मत बनाओ, और भगवान की वाणी में आए ये सत्य निकलेगा। ऐसा श्री कृष्ण भावी तीर्थंकर, 16वें भगवान हो ना तीर्थंकर, तो उनकी ऐसी घोषणा हुई। ऐसा लिखा उसमें हरिवंश प्राण में कि जितने लोगों ने भावना भाई थी कि हम तो धर्म में लगेंगे, भगवान की वाणी में आया है, हम तो कल्याण करेंगे, तो जिनने ब्रह्मचर्य लिया, जिन्होंने घर त्याग की भावना बनाई, जिन्होंने समाधि की भावना बनाई कल्याण की, वो आग लगने पर देव ना उठा उठा के ले गए थे। और जिन्होंने कहा कि देखा जाएगा, ऐसे तो कहते रहते, वे सब जल गए, लाखों लोग जले थे। यहाँ तक कि श्री कृष्ण बलदाव अपने माता पिता को भी नहीं निकाल, अपनी पत्नी को भी नहीं निकाल पाए, अपने बेटों को भी नहीं निकाल पाए। कितने पत्नी या पुत्र होंगे इनका, 8-8 हजार शादियां और 16 हजार शादियां होती थी पहले, और कितना बड़ा समुदाय जला होगा, और 3 खंड का अधिपति भी, और एक व्यक्ति की आयु नहीं बढ़ा सका, नहीं निकाल सका, और दूसरे को तो नहीं निकाल सका, यहाँ से निकला वो आकाशवाणी में ये बात आई कि 2 व्यक्ति के अलावा तीसरा नहीं बचेगा, बलदाव और श्री कृष्ण, नारायण और बलभद्र, ये दोनों बचेंगे और कोई भी नहीं बचे। और दोनों रोते हुए निकल गए, जो मांगी तुंगी है उस पहाड़ के पास उनके मरण हुआ श्री कृष्ण का, तो कहते बलदाऊ ने वहां मट्टी दी, तो वो प्यासा तड़पता रहा तीन घंटे का अधिपति दिलीप भैया। एक व्यक्ति को एक गिलास पानी न मिले, और कितना बड़ा आदमी था वो, तीन खंड का अधिपति, अर्ध चक्री, और पानी नहीं मिलेगा क्या? इतना भी पुण्य नहीं रहेगा क्या? देखो आप आगम पढ़ो, तो इस जड़ के पुण्य के उदय के भरोसे नहीं बैठना, तत्व निर्णय के बल से जीवन जी। जो पूंजी अपनी है वो शांति देगी, जो संयोग है इसका कोई भरोसा नहीं, ये कब आपके पास खड़ा है और कब बाजू में खड़ा हो जाए। वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिया, इसका कोई ठिकाना तो है नहीं, ये तो उदय से खेल खेलती रहती। जब तीर्थंकर आते हैं तो 14 करोड़ रत्न रोज बरसते, और उन्होंने एक भी आज्ञा नहीं चलाई, बरसते क्यों? उनका पुण्य ऐसा, केवल ज्ञान होने पर समोसा बनता है, कौन बनाता है? कब का आदिनाथ ने और महावीर से, अपने आप उदय प्रमाण योग बनता है, उदय के अनुसार संयोग बनेंगे। संयोगों की तरफ मत देखो, ये तो उदय के चाकर है। आप तो ज्ञान से अपना वैभव देखो कि मैं हूं कौन, क्योंकि अपन को हमेशा की यात्रा करना, हमेशा के लिए अभव में दोबारा लौट के ना। भविष्य जिनसेन स्वामी थे, 6 वर्ष की उम्र थी, और उनके पड़ोस में एक बालक की जन्म हुआ, तो बहुत प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे लोग, बहुत हर्षित थे, बहुत दिनों बाद जन्म मिला बच्चे को। तो शाम को वो बच्चा मर गया, तो जिनसेन स्वामी ने अपनी मम्मी से पूछा, मम्मी सवेरे कौन सी सीढ़ी लगी थी और शाम को कौन सी सीढ़ी? आवाज तो बदल गई, सवेरे तो कैसे गीत गाए जा रहे थे, शाम को कैसे गीत गाए जाए? तो मम्मी को बताना पड़ा कि बेटा मेहमान आया था चला गया। कि कहां से आया था मम्मी, वो कहां चला गया? कि बेटा ये संसार में जीव घूम रहा है, और कहां से आता है? जैसे कर्म कमाए हैं उसके हिसाब से उस जगह जन्म लेता है, और फिर जैसी कमाई करता है तो उसके हिसाब से ट्रांसफर हो जाता। तो मम्मी ये ऐसा कि हमारे साथ भी होगा? ये विचारशील जीव कहला कि क्या मम्मी हमें भी ऐसे जन्म मरण सहना पड़े? कि बेटा ये तो संसार का सर, तो क्या इसके अभाव की कोई विधि है कि नहीं जगत में? कि हे इस समय वीरसेन स्वामी के पास, उस समय भी श्रवण वेल गोला में थे, जिनकी प्रतिज्ञा थी कि मैं 100 व्यक्तियों को जैनी बनाकर भोजन करूं। उस समय वहां के शासक मुस्लिम थे, उन्होंने सारे नगर के नगर अजैन बना दिए थे जैनों को, और कहा था कि यदि दिन में खाया रात में नहीं खाया तो जेल में डाल दूंगा, सबको रात में खाना पड़ेगा, कोई देव दर्शन नहीं कर सकता। तो सब भयभीत होकर के और रात में खाने लगे थे, बहुत से आज भी जैन है अजैनों जैसा जीवन जीते। तो ये वीर जैन वहीं से घूम रहे थे, और इन्होंने पानी छान कर किसी नदी का पीना चाहा, और वहीं से उनका कर्मचारी निकला, उन्होंने कहा कि क्यों आप जैन हो? कि हाँ, पानी छान के पीते हो तो तुम्हें मालूम है आके राजा का कानून? हमें नहीं मालूम था, चलो जेल। अब उस दिन था राजा का जन्मदिन, इसलिए राजा ने कहा इसे छोड़ो, और ये आइंदा ये गलती नहीं करना। अब छोड़ा, और उन्होंने जाकर प्रतिज्ञा ली श्रवण बेलगुला में अपने मुनिराजों के पास कि मैं जब तक 100 व्यक्तियों को जैनी नहीं बना लूंगा तब तक आहार नहीं लूंगा। और कितने दिन आप कल्पना करो कि कितने दिन 98 बनते होंगे, कभी 99 तक बने होंगे, एक व्यक्ति रह गया तो नहीं भोजन हो रहा। मतलब ऐसा दृढ़ संकल्पता थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि पूरे जैनों को साफ कर दिया, नगर के नगर सब जैन जैसे हो। तो जिनसेन स्वामी ने पूछा था, अभी समाधि मरण का प्रसंग इसलिए याद आई कि उनने पूछा, मम्मी इस जन्म मरण से रहित होने की कोई विधि नहीं है क्या? हमें भी मर के जन्म लेना पड़ेगा, जन्म लेके मरना पड़ेगा। हाँ बेटा ये तो संसार का स्वरूप, इसमें कोई कंसेशन नहीं, तो क्या विधि है? कि वो वीरसेन स्वामी बताए, और उनके पास गए, और फिर 6 साल का लड़का, सोचो 6 साल के बच्चे को ये विचार आया, अपने आके तो 60 साल के व्यक्ति को नहीं कह सकते कि चलो मंदिर और वो 6 साल का बच्चा कह रहा है महाराज हमें डर लगता है, जैसे संसार में पेट में आना, फिर जन्म लेना, फिर मर जाना, हमें तो नाम से ही घबराहट होती, आप हमें कोई विधि बताओ। 2 साल तक पढ़ाया, जब 8 साल का हो गया तो उसे दिगंबरी दीक्षा दे दी। वही 8 साल की उम्र, किसे लड़का लगता होगा अपन तो कल्पना नहीं कर सकते। 8 साल में दिगंबर, उनको आगर्भ दिगंबर कहा जाता, यानी कभी इनने कपड़े पहने ही नहीं, जन्म से नंगे रहते थे, पहले ज्यादा कपड़े नहीं पहनते थे, और बाद में तो 6 साल में चला गया वो बच्चा और 8 साल में दीक्षा ली। ये प्रसंग है कि कैसे जन्म मरण का अभाव हो। उपाय एक है, तुम अपने को देह से भिन्न जानो। जब देह मरेगी तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि देह अपनी नहीं है, ये मट्टी की रचना, ये अपने अपराध से मिली है और कालांतर आयु कर्म के वियोग होने पर छूट जाएगी। इसे अपन को चिड़ होकर के सुखाना और हटाना भी नहीं, और इसको सजाना भी नहीं, दोनों तरफ से सावधान है। कितना उत्कृष्ट जैन शासन मिला अपन, महाभाग है, सारे जगत के जीव तड़प रहे, कोई विधि नहीं बता सकता। हमारी माता जी का देहांत हुआ तो 2500 लोग बैठे थे, और पढ़ी लिखी थी नहीं, और तो भी द्रव्य दृष्टि जिन्हें ईश्वर रखे रहती थी, और बाहर बैठी रहती। पहली क्लास किसी तरह से कैसे किसी ने घर में पढ़ाया कि कैसे, पहली क्लास के अक्षर वर्जन, और वो ऐसे जोड़ जोड़ के पढ़ती रहती। और वो जब देह छूटने का समय आया तो 12 दिन पहले उन्होंने बता दिया था कि अब हम चले जाएंगे, नहीं बता, और फिर ऐसा याद करती थी हमें बताओ सीमंदर भगवान के पास कैसे जाना पड़ता, ऐसा आखिरी में उनकी ऐसी वचन निकलती थी, हमें भगवान के पास जाना, ऐसा सीमंदर देव का नाम लेती थी, और क्या क्या त्याग कर दे, हमें त्याग करवा दो। तो सब जो योग्य था छोड़ा उन्होंने, 12 दिन तक शांति से जीवन जिया, और देह छोड़ करके सब लोग 2500 लोग पंच परमेष्ठी का स्मरण कर रहे थे, और देह छूट गई, छूट गई ना। इसमें लिखा है कि ऐसी भी देह छूटे तो समाधि नहीं, शांति से छूटे, 2500 लोग रमोकार मंत्र सुना रहे हो तो भी उसे हम समाधि नाम नहीं देंगे। समाधि तो आत्मा का अमृत पीते पीते देह की याद ना चला जाए। देह अपना नहीं है तो अपना नहीं लगे, आत्मा अपनी है तो अपनी लगना चाहिए, उसका सुख भोगते भोगते जाए, अमृत पीते पीते। देखो इस शरीर को मेरा एक क्षेत्र में रहने रूप अवगाह है, संबंध है, तथापि मेरा रूप तो ज्ञाता है, शरीर जड़ है और मैं तो अमूर्त एक हूं, देह मूर्त एक है, मैं अखंड एक हूं। इस शरीर अनेक परमाणुओं का पिंड है और मैं अविनाशी हूँ, देह विनाशी है। अब इस देह में जो रोग क्षुधा आदि त्रसा आदि उत्पन्न होंगे, मैं उनका क्या करूंगा बाबूजी, ज्ञाता रहूंगा। सवेरे स्वामी जी इतना अच्छा प्रवचन में कह रहे थे, भाव भावक दोष का निराकरण करा रहे थे कि क्रोध आएगा तो क्या करेंगे, मान आएगा, माया आएगी, वो तो दूसरे नंबर की स्थिति थोड़ी ऊंची थी, परंतु अपन अपने स्तर से समझे कि अपन को घर में चिड़चिड़ाहट होती, गुस्सा आती है, घर में कसाई आती है, ऐसे प्रसंग तो सभी के घरों में बनेंगे, क्योंकि अभी ऐसे परिस्थितियां भी हैं और ऐसा अपना जीवन। तो अब बताओ उस समय जब क्रोध आएगा उस समय अपन को क्या करना चाहिए। सवेरे के प्रवचन में जो बैठे थे उन्हें पता, गुरुदेव कहते थे ये तुम्हारा बस का काम नहीं है कि क्रोध नहीं आए, ये तो होने वाली एक घटना है कि वो भी एक कार्य होगा। आपका रोल क्या है कि ये मैं नहीं हूं ऐसा जानकर इससे भिन्न मैं ज्ञाता हूं, इसे देखना, इसे ज्ञाता देखने से क्रोध चला जाएगा, और मैं क्रोधी हूं देखोगे तो क्रोध बढ़ेगा, फिर क्रोध दूर नहीं होगा। ऐसा उन्होंने सब में लगाया था, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में, रति में, नाम कर्म में, वाणी में, सब में लगाए थे एक ही, और फिर वो तो उपशम श्रेणी में लगा रहे थे कि देखो अभी स्थिरता नहीं है और इस जाति का भी योग है, तो मुनिराज कैसे जीवन जीते होंगे कि उनका बलन जो इस तरफ जाता था देह मन वाणी तरफ, अब का अब उनका प्रसार इतना बढ़ गया कि इसमें कुछ भी घटना घटती रहती है उन्हें पता नहीं चलती, इस तरफ खिंचाव हो गया, इस तरफ झुकाव हो गया, तो ये सब घटनाएं घट के निकल जाती हैं और जीवाराधक बना रहता। संसार सक्त चित्तानां मृत्युर्भीत्यै भवे नृणां मुदायते पुनः सोपि ज्ञान वैराग्य वासिनां। ये सब समाधि मरण के एक एक हेडिंग जो लिखी ना, ये आनंद देने वाला है। समाधि मरण कल्प वृक्ष है, समाधि मरण वाला जीव भय से रहित होता है, समाधि मरण उत्तम दातार है, ऐसी विशेषणों से चर्चा कर रहे। संसार में जिनका चित्त असक्त है, अपने स्वरूप को जो नहीं जानते, मृत्यु उनके लिए भय करने वाले। देखो मौत का डर सबको लगता है, सबको नहीं लगता, मोही को लगता। क्यों लगता है? क्योंकि वो अपना अस्तित्व शरीर में मान के बैठा है, इसका डर है। डर देह छूटने का नहीं है, सुलभ मृत्यु से दुख नहीं होता, ये पढ़ा रहे भगवान। क्योंकि देह के और आत्मा के वियोग का नाम मृत्यु है, तो ये तो घटना है, ये तो उदय प्रमाण आयु कर्म निमित्त है, तो घटेगी। ये ज्ञानी भी इसे नहीं हटा सकता और अज्ञानी भी नहीं हटा सकता। फिर अज्ञानी दुखी क्यों होता है और ज्ञानी सुखी इसी प्रसंग में क्यों रहता है? क्योंकि ज्ञानी को ये मालूम है कि तो पड़ोस में घटना घट रही है, हमें कहाँ घट रही। इतना भेद विज्ञान होने से उसे दुख नहीं होता। अपने पड़ोस में किसी के घर में जन्म हो बालक और किसी के घर में मरण हो, तो अपने यहां सूर सूतक कुछ लगता है कि नहीं लगे? क्यों? वो अलग है हम अलग। ऐसे ये देह का भी हो तो अपन को दुख होगा कि नहीं? नहीं होना चाहिए। कब? जब ये देह अपनी नहीं लगेगी तब। तो एक तो ये बताया कि समाधि मरण आनंद देने वाला है, किसे आनंद देगा? मगर जिसे तैयारी होगी, देह को देह जानेगा, अपने को आत्मा मानेगा, तो इसको खुशी होती है देह छूटने। स्वामी जी का एक दृष्टि निधान वाली पुस्तक में आया था कि सम्यक दृष्टि जीव मरना चाहता और मिथ्या दृष्टि जीव जीना चाहता। उन्होंने कहा कि मिथ्या दृष्टि जीना चाहता का अर्थ क्या? कि वो अपने प्राण 10 प्राण से मानता है तो वो मरना नहीं चाहता जी, और ज्ञानी जी इन प्राणों को न्यारा चाहता है और इससे छूटना चाहता है। तो इसको अपनी भाषा में कहें तो मरना चाहता, और मरना कितना बड़ा है, कितना बड़ा पुरुषार्थ है कि मरण हो बिल्कुल डरे न। कैसे घुसे होंगे वे दीवान अमरचंद जी शेर के पिंजरे में? अपनी तो बुद्धि में नहीं आता। क्या हुआ? ये जो श्री कृष्ण है और बलदाऊ, ये दोनों शंख और निर्नामक नाम के मुनि थे हरिवंश पुराण में। क्या नाम था? शंख और निर्नामक। क्या नाम था? शंख और निर्नामक। इसलिए कह रहे हैं कि जरा मुख पवित्र होना चाहिए, ये महापुरुषों के नाम है। तो दोनों मुनि आचार्य परमेष्ठी की छत्र छाया में खाई में बैठ के पढ़ रहे नीचे, और एक व्यक्ति था ब्राह्मण, बदसूरत था, काला कलूटा, वह शरीर की रचना विकृत थी, तो बहुत दुखी रहता था, भागता फिरता था कि लोग हमें देख के चिढ़ते हैं, निंदा करते हैं, तो कहां मर जा। तो खाई के पास ऊपर ऐसा घूमता था और हिम्मत पड़ती नहीं थी कि गिर के मर जाए, और मरने के लिए आए थे। तो ये दोनों मुनि अपने आचार्य परमेष्ठी से सीख सीख रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी ये छाया किसकी आ रही है? तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति मरना चाहता उसकी छाया, ऐसा बोल। कि ये व्यक्ति कौन है महाराज जी? कि ये अगले भाव में तुम्हारा पिता बनेगा वो। देखो युग तो देखो कैसा बनता है, कि कहाँ पे वो मरने गया और कहाँ ये उनके बेटे बनने वाले जी बैठे। तो एकदम से एक शिक्षा छोड़ के आ गए दोनों भाई और आकर के उसे उसके पास बैठ गए, पिता बनेगा और ये इसकी ऐसी दशा। कि आपको क्या हो गया, हरि में मानना चाहता कि क्या बात क्या है कि तुम्हें मालूम जैन शासन, इससे तो तुम स्वर्गों में देव होगी, ऐसे सुंदर रूप मिलेंगे तुम्हें कि तुम और असंख्या तो वर्षों की आई मिलोगी, अनुकूलता मिलेगी, मरना नहीं कभी, आत्मघात बहुत बुरा पाप होता, ये चेहरा वेरा अपने लगता क्या है, तो प्रसन्नता से रहो और हमारे साथ रहो, क्या तकलीफ है, कि हमें बहुत शर्म लगती, बहुत शर्म लगती, अरे दिए ऐसा अपन थोड़ी ऐसे, अपन तो आत्मा, उसे साथ में रखा, समझाया बुझाया, वो ही आदमी कामदेव गणा वासुदेव, और वासुदेव गणा जिनके बेटे हैं श्री कृष्ण आदि, और वो वासुदेव गणा तो इतना सुंदर था कि उसे यदि कोई स्त्री देख लेती थी तो पागल जैसी हो जाती, यानी बच्चे के गर्दन में फंदा डाल के कुएं में डाल देती थी, इतना ज्यादा सुंदर था, पानी भरने जाए तो भूल जाती थी कि बाल्टी लगा रहे हैं कि बच्चे को लगा रहे, इतनी सौंदर्य था, 72,000 शादियां हुई उसी, और एक वह पहले क्या दशा थी, गंदा सा चेहरा मिला था और मरना चाहता, और एक बार जिनेन्द्र देव की शरण में आया, आपको और हमें समझ में नहीं आ रहा, अपन को इतना सातिशय पुण्य बन रहा है, इतने अच्छे भगवान, ऐसे सुंदर मंदिर, ऐसा सुंदर जैन शासन, अपनी अनुबोधना चल रही, अपन कभी कभी सोचो तो आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि अपन मुक्ति के बहुत निकट है, कभी अच्छी तरफ से सोचो तो ऐसा लगेगा हमारा कोई अच्छा भाग आ गया, हमारी कोई अच्छी ओन आ रही है, इसलिए हमें ये गौरणी मंत्र सुनने मिल रहे, महापुरुषों की वाणी मिल रही, ये कोई सामान्य बात नहीं, असल में अपन क्या चाहते, अभी फल दिखाओ, यानी जिंदगी जिंदा में हमें देव बन के बता दो, अब वो कह रहे भैया बीज डालते हो तो 5 साल बाद आम आएगा, फिर खूब अच्छी रस वाली आम खाना, थोड़ी धैर्य तो रखो, अपन कहते साहब इतने दिन हो गए कुछ रिजल्ट तो आई नहीं रहा, बाबू जी ये सब पूछते थे लोग कि साहब स्वामी जी आप इतने साल से पढ़ा रहे हैं, ये ज्यो कहते हो ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ अंतर तो आई नहीं ना, ऐसा ज्ञान गोष्ठी में आया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अंतर दिखता नहीं, इनके हृदय भींग रहे हैं, इनके हृदय रो रहे हैं कि हमने क्या मान, इनके हृदय हट रहे हैं उससे आसक्ति से, ये अपनी गलती मान रहे हैं, इन्हें सच्ची बात जानने की जिज्ञासा हो रही, तुम्हें ये उपलब्धि नहीं दिखेगी, क्योंकि मटके पर डला हुआ एक दो बूंद कोहरा, मटके पर डला पानी एकदम से नहीं दिखता, जब बहुत ज्यादा हो जाता तब दिखता है, इसी तरह से जो ये समझ रहे कोई किसी का करता धरता नहीं, पुण्य में धर्म नहीं, भीतराग भगवान हमारे आदर्श है, जिनवाणी माता ने एकांत स्वरूप बताती है, ये परम पवित्र बातें हैं, गजब की उपलब्धि, अपन को ऐसा लगता है कि ये तो बहुत दिन से जानते हैं, कुछ होना तो चाहिए, कहाँ होना चाहिए, लड़का बच्चा होना चाहिए क्या, क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से मतलब आप विचार करोगे तो आपको शांति शांति महसूस हो, काई की शांति, कि कोई अपनी उपेक्षा भी करे तो हंसी आएगी, देखो भूले जानते नहीं दे लेने तो बेचारे गाली थोड़ा हल्का हो जाए, इतनी संता सहनशीलता कहां से आ जाती, सच्चाई को जान, किसी ने कह दिया, अरे कह दिया होगा, वो जानता कहां है कि मैं कौन, ये इतनी समता ये गुरुदेव का मिलना है, ये जिनवाणी का मिलना, ये महावीर स्वामी मिल गए अपन को कुंद कुंद देव, एक सियार ने जरा सा पानी नहीं पियेंगे, इतना सा आदर किया मुनिराज का, बेचारा क्या जाने जीव तत्व तो क्या है, जीव तत्व तो क्या है, पर इतना ही मुनिराज ने कहा क्या करते हो, मांस खाना चाहते हो, तुम पता है नरक चले जाओ, तुम जियो, तुम्हें भगवान बनने की ताकत है, अब वृद्धिधारी मुनिराज है, पशुओं से बात कर लेते हैं, जंगल का मामला है तो समझ में आ गई उसे, अभी कम से कम मांस खाना छोड़ते हो कि नहीं, पानी छोड़ो रात्रि का, पानी नहीं पीना चाहिए, मांस खाने की कैसे कहे, और उसने ऐसा सिर झुकाया और बैठ गया वहीं पर, कथा सबने पढ़ी, और उसने सियार ने रात्रि का पानी छोड़ा, और वो जब एक दिन प्यास लगी, घूमता भटकता रहा, प्यास लगी तो नीचे उतरता था कुएं के सीढ़ी वाला कुआं, तो वहां देखता था अंधेरा, तो लौट आता था, अरे हम रात में नहीं पीते, और बाहर निकलता था तो उजीला दिखता था, तो फिर नीचे जाता था, फिर अंधेरा दिखता था तो फिर नहीं पीता था, फिर बाहर निकलता था तो उजीला, ऐसा नीचे ऊपर छठमा सातमा छठमा होते होते थोड़ी देर में उसकी प्राणांत हो और वो व्यक्ति दूसरे भाव में सिद्ध बन गया, अनंत बन गया। कोई कल्पना करेगा ये प्रथमान युग पढ़ने पर आपको ऐसी हिम्मत आएगी कि एक भाव पहले मृगसेन धीव जो बिना मछली के रह नहीं सकता, और मुनिराज को पता था आज इसका प्राणांत है, और उन्होंने कहा बेटा तुम क्या करते हो, नरक जाना है क्या तुम्हें? कि साहब नरक कहो चाहे स्वर्ग, मैं तो इसके बिना रह ही नहीं सकता, ये तो मेरा भोजन, मैं तो इसी को बेच के पेट पालता। तो ऐसा करो कि पहली मछली फंसे उसे तो छोड़ सकते, हाँ जी इतना कर सकते। और मुनिराज को दिख रहा था आज इसका अंतिम दिन है, अब अधिज्ञानी मुनी थे, चौथे काल की बात है सर। और वो आया जब पहली मछली पांच जगह फंसी, उसने एक धागा बांध दिया था, वो बड़ी मछली थी और बार बार वही फंसती थी जाल में, तो उसने ये जगह बदली तो अभी वही फंसती थी। सब मुनिराज को दिखता होगा कि ये आज ऐसा नाटक हो, और उसे जब मछली नहीं मिली, वही मछली बार बार फंसती थी, तो वापस आया और जैसे उसकी घरवाली का नाम था घंटा, तो इतनी बड़बड़ाई गालियां दी और दरवाजा बंद कर लिया, और बाहर में रखा था तखत उसी पे जाके बेचारा लेट गया, और उसकी अंगूठा जो बाहर निकला था तखत के बाहर, तो एक अजगर आया सर्प, उसने मेंढक समझकर उसके अंगूठे को ऐसा चबाया, तो इतना जहर फैला कि रात में मर गया। और वो लड़का दूसरे भाव में पांच बार मछली को बचाया, तो उसके शत्रु ने पांच बार इसे मारने की कोशिश की और ये बच जाता था, और उसी भाव में भगवान बना। कितने भाव लगे वही साहब, और क्या पाला था, नहीं इतना ऊंचा जैन दर्शन है। एक बार हृदय से स्वागत हो इसका कि सत्यता ये प्रभु हमें आज तक नहीं मानता, वो मुझे तो इन बातों की खबर है। अपन क्या समझते हैं कि देह छूटते समय में रोग ना हुए, ये कहते हैं कि रोग हो सहनशीलता की शक्ति हो, ये रोग मिटाने की नहीं बातें करते, ये नहीं कहते प्रतिकूलता ना आए, ये कहते प्रतिकूलता भले आए क्योंकि ये तो उदयाधीन है, इसमें तो हमारी चलती नहीं, भगवान की भी नहीं चलती, पर हमारा उपयोग उसमें ना खराब हो, हमारा चित्त अपने चेतन से जुड़ा रहे, ये भगवान आपका इतना आशीर्वाद चाहिए। ऐसी कल्पना भी नहीं होगी, ऐसी भी समाधि होती। सारे जगत के लोग तो सोचते 20-25 आदमी बैठ गए और नमोकार मंत्र का वांछन किया तो देखो भैया इनकी समाधि मरण से प्राण छूटे। कोई कोई के ऐसे होते विवेक कि किसी किसी को मिथ्या दृष्टि है वो और अभक्ष खाता है और आखिरी समय बहुत शांति से दे छूट, बिना बिल्कुल दर्द होता न कुछ विकल्प आते न कुछ आगे पीछे का कुछ है? कोई भार नहीं, और ऐसा ऐसा बैठा बैठा एकदम से लुढ़क जाता और दे छूट जाता। तो जिनवाणी ये पूछती है कि बताओ ये समाधि है कि नहीं, क्योंकि ये दे छूटना शांति से ये समाधि नहीं है, आत्मा का लाभ लेते हुए दे छोड़ना ये समाधि, दे अकेले थोड़ी छोड़ना, हमें तो मोह भी छोड़ना, दे तो अनंत बार ऐसी छूटी। और आजकल ये गंदे बंद बांधते हुए भैया ऐसा रोग हो भगवान 2 मिनट में चले जाए, रोग हो नहीं कहता भाई, ऐसे 2 मिनट में चले जाए, ज्यादा न तड़पे, मतलब 2 मिनट में चले जाए यानी हार्ट अटैक जल्दी से हो जाए और मर जाए, ये मुफ्त के बंद बांधता रहता बैठे हुए। अपने आचार्य तो कहते सामना करना, कोई भी रोग आए मेरा परिणाम न जाए इसमें, बात तो कुछ अलग है, अपन कुछ अलग सोचते, अपनी सोच इस जिनवाणी से मिलना चाहिए। हमें संयोग में कुछ परिवर्तन नहीं चाहिए क्योंकि हमारे भगवान कर्ता धर्ता नहीं है और संयोग में दुख नहीं है, बात तो दुख है अज्ञान में, तो हे भगवान वो अज्ञान न हो जिससे हमारे परिणाम बिगड़ते। कितना अच्छा मंत्र पढ़ा, भी दिन रात मेरे स्वामी में भावना ये दिन रात भावना, ये मेरा नहीं ये मेरा नहीं ये मेरा नहीं, मैं अकेला हूँ, अकेला आया था अकेला ही रहता हूँ, ज्ञाता ही हूँ ज्ञाता हूँ, कहीं सुख नहीं है, कोई सुखी नहीं, न धनी सुखी है न गरीब सुखी है, न सुंदर चेहरे वाला सुखी है न देव सुखी है, आत्मा की रुचि वाला जीव सुखी है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। ये रात दिन अपन ये पढ़ाई पढ़ेंगे तो फिर अपन को कोई देह छूटते समय दुखी नहीं कर सकता, प्रणाम नहीं बढ़ा। पांच प्रकार के मरण बताए ऐसे, बाल बाल मरण, फिर बाल मरण, फिर बाल पंडित मरण, फिर पंडित मरण, फिर पंडित पंडित मरण। अब सब जीवों की बाल बाल मरण हो, कुछ पता ही नहीं, बच्चों जैसे मरण हो जाते, जैसे सोए हैं और चले गए, आ गए गर्भ में, आ गए लटक गए चले गए। कितने जीव तो ट्रेन में एक्सीडेंट में मर जाते, कि आग लगने पे मर जाते। अभी जबलपुर में थे तो वहां पर तीन बच्चियों को लेकर मम्मी बैठ गई कि हम जब इसके बाद हमारी कोई व्यवस्था नहीं है, ये बच्चियां कहाँ भूखी मरेंगी, केरोसिन ऑयल डाला तीनों बच्चियों सेहत मामा। एक बिल्कुल सच्ची घटना बता रहे आपको जबलपुर के पास, कि एक माँ अपने दो बच्चे थे, उसका पति तो लकड़ी बीनता था और वो लकड़हारा जब गया और वहीं उसी सर्प ने काट खाया, वहां आराम कर रहा था तो वहीं मर गया। अब खबर कौन लाए, तो ये गई रात में देखने तो मरा डाला था। ऐसे बहुत दुख हुआ कि बेटी ने पति भी चला गया और दो बेटे हैं, छोटा बड़ा बेटे को ले करके अब कहाँ जाए। तो उसे अपने मायके की याद आई कि पिताजी के पास चल, तो पिताजी के पास जाने पर के लिए नदी पार करना था और ये भी पैसे नहीं, ऐसा ऐसी गरीबी होती। तो नदी पार करने के लिए उसने कहा कि हम एक बेटे को पहले ले जाके उस तरह बिठा दें, तो सबसे पहले छोटे बेटे को ले जाके उस नदी के पार बिठा। अब दूसरे बेटे को ले जाने के लिए आए, इतने में वो छोटे बेटे को बाज पक्षी उठा के ले गए जो मांसाहारी था। दूसरा बेटा यहाँ था, उसने देखा कि हमारे भैया को ले गए ले गए, तो भी जोर से दौड़ा, मम्मी उसे बचाने दौड़ी, ये मम्मी के पीछे दौड़ा तो ये भी बह गया और मार गया। अब कितने बचे, पति भी चला गया, दोनों बेटे भी चले गए, अभी ठोंठ सी बची, कोई नहीं बचा। अब गई अपने पापा के पास, वहां देखा तो ताला लगा था, कोई नहीं था। पता चला कि यहाँ भूकंप आया है और ये सारा घर ध्वस्त हो गया है, पिताजी बची थी तो अस्पताल में आखिरी सांसें ले रहे। इस जीव का कौन है ये समझ में नहीं आता। इस तत्व ज्ञान के अलावा बताओ यदि कोई शरण दे दी इसे। आप ऐसे मरण अपन ने अनंत बार किए, ये तो कथा अपन दूसरे की पढ़ रहे, परंतु ऐसा जीव को पंच परावर्तन में कौन सा जन्म और मरण नहीं हुआ जो अपन को बहुत अच्छे दिखते हैं या बहुत खराब दिखते हैं, सब इस जीव पर बीते। एक ही उपाय भगवान को दिख रहा है कि ये किसी तरह से अपने स्वरूप को देह से भिन्न समझ जाए, तो फिर देह का कुछ भी बिगड़ेगा बनेगा छूटेगी तो इसे कष्ट नहीं होगा। और यदि ये भिन्न नहीं समझ पाया तो कोई ऐसा कहेगा हम तुम्हारा सामान ले जाए, इतने में रो पड़ेगा कि हमारे घर का ही सामान चला गया, चोरी हो गई आज, क्योंकि ये ममत्व से दुखी होता है। सुलभ बताओगे कि जैसे अपन को पता चला कि हमारे पाक हमारे घर से 1,00,000 रुपए की चोरी हो गई और अपन मंदिर जी में बैठे, तो जब तक हमें पता नहीं था तब तक हमें कोई दुख नहीं था, और जैसे ही पता चला उसी समय से दुख चालू हुआ कि नहीं, उसी समय से दुख चालू हुआ कि नहीं। जिस समय से पता चला, इसके पहले तो बहुत अच्छे से पूजा कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, और जैसे ही नीचे होते भैया तुम्हारा ताला तो टूटा डला, और श्रीमती जी रो रही है, वो कह रहे हैं कि पैसे सब लेके चला गया। तो बताओ जिस जब पता चला तभी से दुख हुआ कि नहीं, तो कब से दुख हुआ। और ये पता सिद्ध भगवान को सबसे पहले चलता, अनंत भगवान, और उन्हें कितने परसेंट दुख होता, और उन्हें दुख नहीं हुआ तो तुम्हें क्यों हुआ। उन्हें दुख नहीं हुआ ना कि ज्ञान होने से दुख नहीं होता, पर अपन को क्यों दुख हुआ जब से जाना। ये थोड़ी न्याय करवाती जिनवाणी कि आपको जब पता चला तब से दुख हुआ, तो जानकारी से दुख होता है कि कोई और कारण से दुख होता है, और कारण से दुख होता है, तो वो कौन सा कारण है जिससे हम दुखी हो गए। वो कारण है कि मेरे पैसे गए, तो मेरे कब से लगे कि जब से अपने आत्मा के गुणधर्म अपने नहीं लगे, तो फिर जो संयोग में मिली वो अपने लगे। अब इसकी ममता से दुखी है और कहता क्या है, हमें पता नहीं चलता तो कोई दुखी नहीं। यानी ये ज्ञान को नष्ट करना चाहता है, ममता को नहीं छोड़ना चाहता। और ये कहते हैं कि कितना भी आए जाए ज्ञान में सब आएगा, परंतु तुझे दुख नहीं होगा क्योंकि मेरा नहीं कलश ही जा। जहां दिए अपनी नहीं तान अपना को, समय हो गया अपना। ऐसे विरक्त होने की बातें हैं, कैसे हृदय भींगे सच्चाई का एक बार स्वागत करे और ये जीव से अपने आप को बचा ले, क्योंकि इसका कोई रक्षक नहीं है। अनंत देव को राग आता नहीं है, जैसा पुरुषार्थ करते हो वैसा फल आता है, तो विपरीत पुरुषार्थ का विपरीत फल अब ना आए। एक बार कमर कस के खड़े हो जाए कि जो होगा सो होगा, हमें अब कोई हमें दुखी करने वाला नहीं है। हमने आज से कसम खाई है कि कभी स्वप्न में भी देह को अपना नहीं मानेंगे, आत्मा को अपना मानना नहीं भूलेंगे, फिर कोई दुखी नहीं कर सकते। ये अपन पाठ पढ़ेंगे ये समाधि में। चलो चलो 31 नंबर से। धन्य धन्य सुकुमाल महामुनि कैसे धीरज धारी, एक श्यालनी युग बचायुत पावे भको दुखकारी। यह उपसर्ग सहोदर थिरिता आराधन चित धारी, तो तुम्हारे जिए कौन दुख है, मृत्यु महो सब भारी। धन्य धन्य जो सुकोशल स्वामी व्याघ्री ने तन खायो, तो भी श्री मुनि निकड़गे नहीं आत्म सहित लायो। ये उपसर्ग सहोदर थिरता आराधन चित धारी, तो तुम्हारे जी कौन दुख है, मृत्यु महो सब भारी। देखो गज मुनि के सिर ऊपर विप्रयगनी बहु बारी, शीश जले जिम लकड़ी तिनको तो भी नाही चिगारी। ये उपसर्ग सहोदर थिरता आराधन तो तुम्हारे जिए कौन दुख है, मृत्यु महो सब भारी। सनत कुमार मुनि के तन में कुष्ठ वेदना व्यापी, छिन्न भिन्न तन तासो तब चिंत्यो गुण आपी। ये उपसर्ग सहोदर थिरिता आराधन चित धारी, तो तुम्हारे जी कौन दुख है, मृत्यु महो सब भारी। श्रेणिक सुत गंगा में डूबो तब जिनना चितार्यो, दर्शन लेकना परिग्रह छोड़ो
सुदेवावरधार्यो ये उपसर्ग सहोध तेरेता आराधन चित धारी तो तुम्हारे जी कौन दुख है मैं तुम सब भारी समंत भद्र मु वर के तन में अभेदना आई तो दुख में मुनि नेक न डिगियो चिंत्यो निज गुण भाई ये उपसर्ग उदर तिरता आराधन चितधारी तो तुम्हारे जिए कौन दुख है मैं तुम हो सब भारी ललित घटा देख तीस दोये मुनि कौसाम्बी तट जानो नदी में मुनि वे कर मुवे सुदुख हुन नहीं मानो ये उपसर्ग सहोदर तिरता आराधन चित धारी तो तुम्हारे जिए कौन दुख है मृत्यु महो सब धर में घोषे मु चंपा नगरी बाए ध्यान धर ठाड़ो एक मास की कर मर्यादा तिसा दुख से गाड़ो ये उपसर्ग उधर तिरता आराधन चित धारी तो तुम्हारे जिए कौन दुख है मृत्यु महो सब भारी श्री दत्त मुन हो पूर्व जन्म को हेरी देव सु आके बिक्रिय कर दुख शीत तनो सो सो साध मन लाके ये उपसर्ग सहोदर तिरता आराधन चित धारी तो तुम्हारे जिए कौन दुख मैं तुम हो सब भारी वृषभ सेन मुनि ज्ञान धरो मन लाई सूर्य गामे अरु उष्ण पवन की वेदन सही अधिकाई ये उपसर्ग उदर तिरता आराधन चितधारी तो तुम्हारे जिए कौन दुख है मृत्यु महो सब भारी सजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी स्वरूप शोध स्वरूपी विनाशी हूँ
ભગવાન નો શ્રી સિમંદર આદિ થી લઈને અજિતવર્ય પરત વિશ્વહરમાન જિનેન્દ્ર ભગવાન નો અત્રે પારલાજીન મંદિરમાં બિરાજમાન થી બાહુબલી મુનિન્દ્ર ભગવાન નો શ્રી સમયસા પ્રવચનસા પંચાસ્તિક અષ્ટભો નિયમસરાદિ પંચપરમાગમ જીનવાણી માતનો ભરક્ષેત્રના સમર્થ આચાર્ય શ્રી કુંદકુંદાચાર્ય દેવાદિ સર્વાચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ ગુરુ ભગવંતોનો હમ ભક્તોના તારણા રૂપકારી શ્રી કાહન ગુરુ દેવનો પ્રસમ મૂર્તિ ધન્યવતા પૂજ્ય ભગવતી માતનો અપૂર્વ અવસર અને આત્મસિદ્ધિના દાતા એવા કૃપાળુ દેવનો અષ્ટાનિકા મહામહોત્સવનો પરમ પવિત્ર સત્ય સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો. હે જિન વાણી ભારતી તુએ જપો જિન રૈન જો તેરા શરણા ગ્રહે સો પાવે સુખ છે જા વાણી છે જ્ઞાન છે સુજે લોકા લોક સો વાણી મસ્તક નમુ સદા રે બોલો જિન વાણી માતનો જય હો.